प्रातः क्लास से कहा था 28 जुलाई 1968। बात चल रही थी जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंचे पद पावेंगे। प्योरिटी की पावर अगर कम आवेगी तो पदवी कम पावेंगे। सारा मदार प्योरिटी के ऊपर है और इस बात में मुझने की दरकार नहीं है। पवित्र बनने का रास्ता भी बताते हैं। एक बार प्योर बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप तो एक ही बात कहते हैं, पवित्र बनने के लिए कि मुझे याद करो। माम एकम याद करो, कोई दूजम याद न करो। मैं गारंटी करता हूँ कि अगर तुम माम एकम याद करेंगे तो तुम बिना सजा खाए घर चले जाओगे। धर्मराज की कोई भी सजा नहीं खानी पड़ेगी, सिर्फ याद करने मात्र से ही तुम्हारी विकर्म भस्म हो जाएगी। अगर याद नहीं करेंगे तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी और जितनी जास्ती सजाएं खावेंगे उतना जास्ती तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5-4 वर्ष बाद में आकर की ये बात समझाता हूँ और मैं अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने के लिए। ये पतित दुनिया है इसलिए इस पतित दुनिया में ही गाते हैं, हे पतित पावन आओ। हम भिखारी पतित बन पड़े हैं, आप आकर के निर्विकारी पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते हैं कि आप आकर के ज्ञान सुनाओ या ज्ञान सुनाकर चले जाओ फिर हम पावन बनते रहेंगे। नहीं, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। पावन बनते हैं तो उसको कहा जाता है पावन निर्विकारी दुनिया और ये विकारी दुनिया। विकारी माने ही विपरीत कर्म करने वाले, वी माने विपरीत, जो कर्म नहीं करने चाहिए वह कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले। तो अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वो सजाएं खा करके जाते हैं। बाप के घर में जितना पहले जावेंगे उतना कम सजाएं खावेंगे। जो जास्ती सजाएं खाते हैं वो पति तो दुनिया में आते हैं, या तो फिर ऐसी दुनिया में आते हैं जहां दो चार कलाएं कम हो जाती हैं, उनको फिर पूरा निर्विकारी नहीं कहेंगे। पूरा निर्विकारी उनको कहा जाता है जो पूरी पवित्र दुनिया में आते हैं, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसा उनका श्रेष्ठ लकब है। इसलिए बाप कहते हैं अभी अभी पुरुषार्थ करके पूरा कर लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि पद कम हो जावे और सजाएं जास्ती खानी पड़े। बल नई दुनिया में रावण राज्य तो नहीं होता है, परंतु वहां पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। हाँ, नई दुनिया में ऐसे नहीं है कि आत्मा पतित बनती है, नहीं, आत्मा में कुछ न कुछ जन्म बाई जन्म खाद पड़ती रहती है। तो गोल्डन एज से सिल्वर एज तक और फिर सिल्वर एज से कॉपर और आयरन एज तक नीचे ही गिरते जाते हैं। त्रेता में चांदी की खाद पड़ती है, फिर नीचे के युगों में दिन प्रतिदिन और ही जास्ती छी खाद पड़ती है, उसे कहते हैं तांबे की खाद, लोहे की खाद। खाद क्या है? विकारों की ही खाद है। जो विकृत आत्माएं होती हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाती, पूरी पवित्र नहीं बन पाती, उन आत्माओं के संग की रंग की खाद पड़ती रहती है। तो बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं अभी तुमको बाप का संग मिला है, बाप तो संपूर्ण निर्विकारी है, खाद का नाम निशान नहीं, एवर प्योर है। अगर इन बातों को कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। जिसने 84 का चक्र खाया है उनको ही समझाएंगे। अगर पूरे 84 का चक्कर नहीं खाया है तो उनको समझाने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पूरी बात समझेंगे ही नहीं। समझने के बावजूद भी औरों का संग करते रहेंगे। बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर के प्रवेश करता हूं। इनके राम और कृष्ण के 84वें जन्म में प्रवेश करता हूं और पतित दुनिया में ही आता हूं। ये सारी दुनिया पतित है, भी पतित है और शरीर भी पतित है। तुम्हारा ये जो दादा है इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर में जाना है। तो ब्रह्मा क्या हुआ? वो ही बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है। फिर मैं पतित पावन इनके पतित शरीर में आता हूँ और इनको पावन बनाता हूँ। पतित शरीर में आते हैं तो एक ही शरीर में दो आत्माएं हुई ना, इतना क्लियर करके समझाते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, इस पतित तन में मुझे याद करो, इसको याद मत करो। इनकी आत्मा तो पतित है, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। गीता का ज्ञान तो तुम बच्चों ने बहुत सुना है, सुनाया भी है, परंतु इतना सुनने सुनाने के बावजूद भी तुमने सदगति को नहीं पाया है। तुम्हारी सत्य गति सच्ची गति नहीं हुई। तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा की दुर्गति हुई है, मेंटेलिटी गिरती गई है। तन भी पतित तमोप्रदान होता गया। अभी मैं तुम्हारी सदगति करने आया हूँ। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज में साथ साथ सुनाए हैं। जिस मीठी आवाज को सुन करके बड़े बड़े आदमी जाकर के इकट्ठे होते हैं, आवाज मीठी, अर्थ कुछ भी नहीं। कितना आपका रस है, कानों का रस सुनने सुनाने तक सीमित है, बुद्धि में समझ कुछ भी नहीं। 28 जुलाई 1968 की वाणी का तीसरा भी भक्ति मार्ग में होता ही है कनरस, और यहाँ तो आत्मा को बाप को बुद्धि से याद करना है। मन बुद्धि से याद करना तो तुम्हारी आत्मा पावन बनेगी। अभी ये भक्ति मार्ग पूरा होता है, कनरस खलास होता है, मैं तुम्हारी आत्मा को वाणी से परे निर्वाण धाम में ले जाने आया हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने आया हूँ जो ज्ञान दुनिया में कोई भी नहीं जानते, और मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान को जल कहते हैं ना, जैसे वो पानी के टुबके होते हैं, गड्ढे गड़ीचियां होते हैं, कैनाल्स होते हैं, नदियां होती हैं, तालाब होते हैं, परंतु वो तो छोटे छोटे हैं और उनका पानी रुका हुआ है। मैं तो सागर हूँ, सागर का पानी कभी ठहरा हुआ नहीं रहता। गर्मी पड़ती है तो भाप बन करके कितना ऊंचा उड़ जाता है, फिर बरसात बनकर बन करके नीचे गिरता है। भाप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से टकराती है, बरसात बनकर के नदियों में आता है। कुएं का भी पानी होता है, कुएं का पानी खोद कर निकाला जाता है, गहराई में खोदते हैं ना, तो बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, कुआं बाड़ी नदी कैनाल्स नहीं हूँ। ज्ञान को ही नाली कहा जाता है और इस ज्ञान के जरिए तुमको मैं सभी कुछ पढ़ाई पढ़ाता हूँ। 84 का चक्र समझाता हूँ तुम्हारी बुद्धि में, 5000 वर्ष के सत्य की सारी नाली है। मूल वतन से सूक्ष्म वतन को क्रास करके तुम स्थूल वतन में आते हो। पहले पहले लक्ष्मी नारायण, मूल वतन से आने वालों में पहले पहले कौन सी आत्मा है? लक्ष्मी नारायण। फिर उन्हों की डायनेस्टी राज दरबार होता है ना, ऊंचे नीचे ढेर पद पदासीन होते हैं। फिर त्रेता में राम सीता कराती, वो भी डायनेस्टी चलती है। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कितने जन्म? 8 जन्म। और राम सीता की डायनेस्टी 12 जन्म चलती है। परंतु वहां जो भी डायनेस्टी चलती है उसमें विकारी बच्चे पैदा नहीं होते हैं, है? क्यों नहीं होते हैं विकारी बच्चे? क्योंकि वहां सब आत्मिक स्थिति में स्वयं स्थिति में स्थित होते हैं, इसलिए विकार का नाम निशान नहीं है, विपरीत कर्म नहीं होते। परंतु आत्मा सुख तो भोगती है कि नहीं भोगती? सुख तो भोगती है। हाँ, श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते हैं, श्रेष्ठ सुख भोगते हैं, इसलिए विकारी नहीं कहेंगे। वहां रावण राज्य नहीं होता। रावण कहते ही है रुलाने वाले को, श्री शेष इंद्रियों से जो सुख मिलता है उसमें रोने करने आदि की कोई दरकार नहीं रहती। रावण राज्य शुरू होता है तो भ्रष्ट इंद्रियों का सुख शुरू हो जाता है, वहां फिर रोते हैं। सतयुग त्रेता में तो तुम पावन होते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हो, तो कहेंगे योग बल से सभी कुछ होता है, तुमको साक्षात्कार होता है कि कब बच्चा होने वाला है, कब महल गर्भ महल में जाना है, खुशी खुशी से जाते हैं, वहां कोई की अकाल मौत नहीं होती है। मृत्यु के समय कोई तकलीफ नहीं होती है, खुशी खुशी जाते हैं। यहां तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, क्यों मृत्यु के समय इतना रोना चिल्लाना क्यों होता है? इसलिए होता है जिसका आदि दुखदाई उसका अंत भी दुखदाई और मध्य भी दुखदाई होता है। यहां तो देखो गर्भ जेल में कितनी सजाएं खाते हैं, त्राहि त्राहि करते हैं, वहां तो रोने चिल्लाने की दरकार ही नहीं, बात ही नहीं। हाँ शरीर तो बदलना ही होता है, पुराना शरीर बदल करके नया लेते हैं। जैसे सर्प का मिसाल है, पुरानी कैंचुल त्यागता है, नई कैंचुल धारण करता है, तो इसमें मुझने करने की बात नहीं है, जास्ती कुछ पूछने का भी नहीं रहता। तो अभी बच्चों को पुरुषार्थ करके एकदम पावन बनने लग जाना है। बाप को याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्यों मुश्किल नहीं है? है सहज है या मुश्किल है? सहज है। बीके में जब पढ़ाई पढ़ते थे बेसिक नॉलेज में, तो चौकड़ी मार के बैठना पड़ता था, खींच के याद करना पड़ता था, कठिन था या सहज था? है क्यों कठिन था? क्योंकि जिसको याद करते थे वो व्यक्त में नहीं था देखने के लिए। जो चीज आंखों से देखी जाती है वो याद जरूर आती है, आंखों से ही क्या, जिन इंद्रियों से भी जो सुख का अनुभव किया जाता है वो याद तो आता है ना। अभी तो तुम बाप के सामने बैठे हो, वहां भक्ति मार्ग में भगवान को याद तो करते हैं, परंतु सामने होता है क्या? जानते ही नहीं, तो सामने होने की बात ही नहीं। अभी मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूं, और अविनाशी सुख का वर्षा देता हूं, ऐसे नहीं अल्पकाल का सुख देता हूँ। तो इतना अविनाशी सुख तुम जन्म जन्मांतर का प्राप्त करते हो, तो क्या तुम एक अंतिम जन्म के लिए पवित्र नहीं बन सकते? यहाँ बैठकर बच्चे इस बात को अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर के स्त्री का मुख देखते हैं तो माया खा जाती है। अभी बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो कोई में भी ममत्व तो नहीं रखो, क्योंकि सब विनाश होने का है, कुछ भी रहने का नहीं है, ये सभी कुछ है। जो इन आंखों से देखते हो सब खलास हो जाएगा, नहीं तो माया का पांप का पसारा कितना इस दुनिया में फैला हुआ है। ऊंची ऊंची महल, माणिया, अटारिया, हवाई जहाज, क्या क्या निकला है। अभी तो बाप कहते हैं कि मुझे एक अविनाशी बाप को याद रखना है, चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करना है, साथ ही साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। गंध की चीजें खाना ये आसुरी गुण है, सतयुग में ये मांस, अंडा, शराब आदि ये गंदी चीजें होती ही नहीं। बाप कहते हैं ये विकारी चीजें हैं, शराब तो सब विकारों को खींचती है, अभी इन विकारों को छोड़ दो, इसके बदले में हम तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं। बल युगल बल करके गंधर्व विवाह करके पवित्र रह करके दिखाओ। बाप कहेंगे ये तो कमाल है, इतनी अच्छी आमदनी हो सकती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। सिर्फ एक जन पवित्र रहने से कितनी सारी आमदनी होती है। इसलिए बाप कहते हैं बल इकट्ठे भी सो जाओ, सिर्फ ज्ञान तलवार बीच में बनी रहे। पवित्र रह करके दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाए जाएंगे, कहेंगे ये तो बाल ब्रह्मचारी है। तो ज्ञान तलवार बीच में रखने के लिए अच्छी नॉलेज भी चाहिए, फिर औरों को भी आप समान बनाना है। सन्यासियों को दिखाना है कि हम कैसे शादी करके पवित्र रहते, तो वो भी समझेंगे अरे इनमें तो बड़ी भारी ताकत है। जीते जगत जीत कहा जाता है ना, कहते हैं शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो इतनी ताकत रही होगी ना। काम तो महाशत्रु है ना, इसलिए कहते हैं कि एक जन्म पवित्र रहने से तुम 21 जन्म विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी प्राइज तुम बच्चों को मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रहकर के दिखा देंगे। आजकल तो ऐसी दुनिया हो गई है कि बूढ़ों को भी विकार में गिरने की दिल होती रहती है। साठ वर्ष के बाद भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। आगे चल के बहुत गंदर्व विवाह भी करके दिखावेंगे। ऐसे भी बहुत निकलेंगे। टाइम भी बाकी थोड़ा है, फिर आवाज भी होता रहेगा, अखबारों में भी पड़ेगा। तुम बच्चों ने रिहर्सल देखी ना, क्या हाल हो गया है। हिरोशिमा नागासाकी में छोटी छोटी बम्बियों का धमाका हुआ तो अभी तक देखो कितने हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। अभी तो ऐसा ऐसा बारूद बनाया है, जो सुनते ही खलास हो जाएंगे। हॉस्पिटल आदि पे पड़े रहने की बात ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी, फट से खत्म हो जाएंगे। आगे चल के और भी रिहर्सल होता रहेगा, रिहर्सल होते होते फाइनल होगा। देखेंगे कैसे मौत होती है। और युक्तियां रचते रहेंगे। अभी भी कहते हैं हमारे पास ऐसा बारूद है जो उसकी बदबू से ही खत्म हो जाएंगे। कोई भी हॉस्पिटल आदि नहीं रहेंगे। तो बताओ कौन बैठकर खिदमत करेंगे। फिर कोई भी ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। बॉम्ब छोड़ा और खलास। इतने बड़े बड़े बॉम्ब बनते हैं, उनके फटने से पृथ्वी डोल जाएगी, बड़े बड़े अर्थक्वेक आवेंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, मल्टी स्टोरीज सब धराशाही हो जाएंगे, सब ही दब करके मर जाएंगे। देरी भी नहीं लगेगी। यहां तो इस दुनिया में देखो कितने मनुष्य हैं, सत्युग में तो बहुत थोड़े होंगे। तो इतने ढेर के ढेर मनुष्यों का विनाश कैसे होगा। सो आगे चल करके देखना, अभी तो 500-700 करोड़ मनुष्यों की आबादी है। फिर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि कितने अरबों खरबों की तादाद में होंगे। एक ही जाति के कितनी नस्ल होती है, वहां तो सिर्फ 9 लाख मनुष्य होंगे। जाति अभी तुम बच्चे तो फकीर हो, तुम्हारा साहब भी तुमको बहुत प्यारा है। अभी तुमने सभी को छोड़ करके अपन को आत्मा समझ लिया, जो सभी कुछ बुद्धि से त्याग देते हैं, अपनी आत्मा की स्मृति को संजोए लेते हैं, ऐसे फकीरों को बाप बहुत प्यारा लगता है। सचिव में तो बहुत छोटा सा जाड़ होगा। आज की दुनिया के इतने बड़े विकारी झाड़ के सब पत्ते खलास हो जाएंगे, बाकी जो निर्विकारी बनेंगे वो रहेंगे। ऐसे संगठन को फिर सतयुग कहा जाएगा। विकारी झाड़ के पत्ते सब खलास, जब तक खलास हो तब तक संगम युग होगा। तो बाप बातें तो बहुत समझाते रहते हैं, कहते हैं जो भी एक्टर्स हैं सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनका पार्ट भी अविनाशी है, अपने अपने टाइम पर सब अपना पार्ट बजाती रहती है। और तुम स्टूडेंट्स भी ऐसे हो जो कल्प कल्प आकर के बाप के सन्मुख पढ़ाई आकर पढ़ते हो, जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाए साथ में ले जाएंगे, हम बाबा के साथ साथ जाएंगे। कहाँ? बाप के घर में साथ साथ जाएंगे और फिर साथ साथ नई दुनिया में आएंगे। तो देखो बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है, शिव बाप बंधायमान है या शिव बाबा बंधायमान है? शिव बाप इस सृष्टि के चक्र में बंधा हुआ नहीं है, बांधा हुआ है तो सिर्फ एक जन्म के लिए, परंतु शिव बाबा तो इस सृष्टि में सदा कायम है। बल बच्चे पहचान नहीं पाते, अभी संगम युग में तो तुम्हें पहचान मिली है, फिर भी सभी को वापस जरूर ले जाएंगे। इसलिए नाम पड़ा है पांडव सेना। तुम पंडा बाप के बच्चे हो ना, पंडा बाप तुमको घर जाने का रास्ता दिखलाने आए। तो देखो वो कौरव क्या कर रहे हैं, नाम ही रखा है कौरव, कौओं की तरह गंद खाने वाले, शोरगुल करने वाले। नीचे गिरते जाते हैं और दुनिया को नीचे गिराते जाते हैं। और तुम पांडव देखो क्या कर रहे हो, तुम पंडा बाप के बच्चे हो ना, पंडे तीर्थ में ले जाते हैं ना, तुम्हारा तो है ऊंचते ऊंचे तीर्थ, कौन सा है, तुम्हें कहाँ जाना है, परमधाम में तो आत्मा बाद में जाएगी, पहले तो परमधाम को तुम बच्चे इस षष्ठी पर उतार लेंगे। इस षष्ठी पर जब तुम परमधाम उतारेंगे तो तुम संगठित तो होकर के रहेंगे, तपस्या में लीन रहेंगे, वो तुम्हारा बड़े से बड़ा तीर्थ होगा, तुम्हारा ही नहीं सारी दुनिया की बुद्धि में बैठेगा कि बाप भारत में इस स्थान पर आया हुआ है, सारी दुनिया की बुद्धि वहां लटकी हुई रहेगी। अभी तुम बाप से राज भाग ले रहे हो जैसे कल पहले लिया था, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार अपना राजभाग ले रहे हो ना, ये ड्रामा की टिक टिक होती रहती है। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। जो ज्ञान धारण किया है उसको ही महत्व देते हैं, ज्ञान जल को, वो ज्ञान जल में ही मस्त रहते हैं, बहुत सुनते हैं बहुत सुनाते हैं, लेकिन कन्याओं माताओं को महत्व नहीं देते। इसलिए जो रामकृष्ण अवतार हैं वो मनुष्य के रूप में पूजे जाते हैं, मानवीय देवता के रूप में। और
बाबा
है,
बाबा ने बोला है राम ने ही जन्म दिया वाल्मीकि के रूप में, राम ने जन्म दिया वाल्मीकि के रूप में, तो वाल्मीकि को डाकू रत्नाकर क्यों कहा जाता है,
रत्नाकर
रत्नाकर डाकू रत्नाकर, कहते हैं कि वो तो नाम भी नहीं जानते थे लिखना।
जो नीचे गिरा हुआ होता है जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठता है। डाकुओं में सबसे बड़ा डाकू कौन होना चाहिए, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो डाकुओं का भी बाप कौन हुआ, रामबलिया तो। इसलिए मुरली ने बोला दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो, तो वो बड़े से बड़ा डाकू भी बनता है। और रत्नागर कहा जाता है रत्नों का आगार, आगार माने खजाना, भले डाकू बनता है फिर भी परिवर्तित होकर के ज्ञान रत्नों का खजाना धारण कर लेता है और बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे ग्रंथ की रचना करता है जो संसार में बहुत विख्यात हो जाता है, उसे कहते हैं वाल्मीकि रामायण। मुरली में बोला है अपने अपने जीवन की कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी है। द्वापर युग में जो शास्त्र बनाए हैं, जिन्होंने शास्त्र बनाए उन्होंने अपने जीवन की कथा कहानी लिखी है। किस समय की? संगम युग की ही कथा कहानी उन्होंने शास्त्रों में लिख दी है। यानी वाल्मीकि ने जो रामायण की कथा लिखी वो राम वाली आत्मा है जिसने रामायण की कथा लिखी। सूर सागर जिसने बनाया है वो कृष्ण की आत्मा है जिसने सूर सागर तैयार किया।
बाबा
हाँ,
जालंधर कौन है? वो तुलसा का पति बताते हैं भक्ति मार्ग में।
तुलसा को?
तुलसा का पति जालंधर बताते हैं।
है, उसका नाम वृंदा था।
देवताओं से युद्ध करने गए,
कहते हैं देव वृंद, वृंद माने समूह, वृंदा, वृंदा स्त्रीलिंग हो गया या पुल्लिंग है?
स्त्रीलिंग,
स्त्रीलिंग है। इसका मतलब जो देव वृंद है उनमें जो देवियां हैं उन देवियों में कोई मुख्य पार्ट बजाने वाली ऐसी देवी भी है जो बड़ी पतिव्रता है। क्या? बड़ी पतिव्रता है। उसको, उसकी ताकत को उसका पति भी पहचान नहीं पाता। जालंधर नाम है उसका। क्या नाम है?
जालंधर।
जालंधर का अर्थ क्या हुआ? जलम धर, जैसे कहते गंगाधर, गंगा जी को धर के बैठ गया, गंगा धर, जैसे अपनी भाषा में कहते ना यहाँ धरौना कर लिया, ऐसे ही उस राक्षस का नाम है जालंधर। जल को धारण करने वाला, उसका पुत्र है जालंधर। उसको ज्ञान का अहंकार बहुत है और जिनको ज्ञान का अहंकार होता है वो राक्षस संप्रदाय होते हैं या देव संप्रदाय होते हैं? अरे ज्ञान तो भगवान का दिया हुआ है कि हमारा अपना है? भगवान का दिया हुआ ज्ञान हम उसको अपना समझ करके बैठ जाएं तो ये तो चोरी हो गई, अमानत में खयानत हो गई। ये राक्षसों का काम है। वो जालंधर नहीं जानता था कि हमारी जो लड़ाइयों में जीत होती है देवात्माओं के साथ वो किस कारण से होती है? जानता था? नहीं जानता था। वास्तविकता ये थी कि उसकी पत्नी पतिव्रत धर्म में बहुत आगे थी। वो पतिव्रत धर्म ही सतीत्व का जो व्रत है वो उसको देवताओं से जीत दिलाता था। वो वृंदा कोई दूसरी आत्मा नहीं है, जिसको कहते हैं तुलसी। क्या तुलसी के बारे में एक और कथा प्रसिद्ध है, कहावत मान्यता है कि भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो तुलसी दल जब तक न डाला जाए तब तक भोग लगता ही नहीं। तुलसी दो प्रकार की गाई गई है, एक काली तुलसी एक हरित तुलसी। काली तुलसी घर गृहस्थ के वातावरण में पलती नहीं है, कांटों के जंगल में ही पलती है, पनपती है, काले पत्ते वाली होती है। और हरित तुलसी हरे पत्ते वाली होती है और आंगन में ही पलती है, घर गृहस्थ में ही पलती है, लेकिन बेडरूम में नहीं लगाई जाती। कहाँ रखते हैं? आंगन में रखते हैं। माना उस आत्मा ने भी भगवान के साथ ऐसा पार्ट बजाया है कि भगवान के भोग लगाने में भोग भोगते हैं ना, क्या भोग लगाते हैं ना, भोग भोगते हैं तो इंद्रियों द्वारा ही भोग भोगते हैं ना, तो भगवान का भोग लगाने में वो सबसे पहले समर्पित हुई। क्या उसने कोई तो ऐसा पुरुषार्थ किया होगा जो जब तक उसका भोग न लगाया जाए तब तक भगवान भोग स्वीकार करते ही नहीं, तो कौन सा ऐसा पुरुषार्थ किया उसने? अपने को भगवान के सामने पहले अर्पण किया। इसलिए अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला, पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे चली गई। वो अपने को अर्पण करती है तब रुद्रमाला में ढेर की ढेर कन्याएं माताएं अर्पण होती। अगर एक ने कदम न बढ़ाया होता तो अनेकों नहीं निकल सकती थी। और इतना बड़ा संगठन एडवांस पार्टी का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता था। तो तुलसी हुई, उसका नाम वृंदा पड़ता है, वो वृंदा भी पुरुषार्थ तो अच्छा करती है लेकिन मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? नारी से लक्ष्मी बनना, वो लक्ष्य प्राप्त करने जैसा पुरुषार्थ नहीं कर पाती, माने कुछ न कुछ फेल हो जाती है, उतनी वफादारी भगवान के साथ नहीं निभा पाती जितनी वफादारी राक्षसों के साथ निभाती। उन राक्षसों में मुख्य नाम जालंधर का है, वो असुर की पत्नी बन गई। कौन सी आत्मा है? लक्ष्मी नहीं बनती है, लेकिन लक्ष्मी न बनते हुए भी भारत में जो राजाई चलती है, राजाओं की चली है हिस्ट्री में, उसमें ये गायन रहता है, ये दिखावा रहता है कि जब राजसभा लगती है तो राजा के साथ रानी भी बैठती है और राजमाता भी बैठाई जाती है। ऊंची गद्दी किसकी दिखाते हैं? राजमाता की ऊंची गद्दी दिखाते हैं। लक्ष्मी की इतनी ऊंची गद्दी नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब कि ब्राह्मणों की दुनिया में एक ऐसा टाइम भी आने वाला है जो वो जगदम्बा भले लक्ष्मी नहीं बनती है परंतु फिर भी जब ब्राह्मणों का दुनिया में बड़े से बड़ा संगठन प्रत्यक्ष होगा तो उस ब्राह्मण परिवार की वो पालना करने के निमित्त बनेगी जिसमें हर प्रकार के धर्म की बीज रूपात्माएं शामिल होंगी। इसलिए वो जगदम्बा कही जाती है, लक्ष्मी नहीं कही जाती।
बाबा रविवार को तुम साथ में हाथ क्यों नहीं लगाते? हलाते भी नहीं उस पौधे को, इसका क्या मतलब है?
रवि किसको कहा जाता है? सूर्य को। जो सूर्य का वार है, सूर्य का टाइम है, तो जगदम्बा के जीवन में, तुलसी के जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में कोई ऐसा भी टाइम है जब रवि का ही वार है, माने सूर्य की बारी है और कोई की बारी नहीं है। उस टाइम कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। जब तक सूर्य के अंडर भी कंट्रोल है तब तक कोई भी जगदम्बा को हाथ नहीं लगा सकता। अंडर दी कंट्रोल से बाहर है और ग्रहों की दशा में है, सूर्य की दशा में नहीं है, तब तो फिर जगदम्बा है। हर धर्म के बच्चे दिल्ली के ऊपर शासन करते ही, खून की नदियां बहाते ही हैं दिल्ली में। टाइम हो गया, पेट नहीं भरा।
बाबा एक पॉइंट,
एक पॉइंट।
कोई भी माता अपने बच्चे को नहीं मानना चाहती है, पर गंगा ने सब बच्चे अपने उस जल में डूब दिए।
वो कौन सा जानवर होता है? नहीं नहीं, जानवरों में वो कौन सा जानवर होता है जो अपने अंडी बच्चे खुद खा जाता है? सांप। ये सांप अपना घर बना के नहीं रहते हैं, दूसरों के बने बनाए घर में घुस जाते हैं। कौन से वो सांप हैं? है? है? नहीं, सन्यासी। जो सन्यासी हैं वो ऐसे ही सांप हैं जो दूसरों के बने बनाए घरों में घुसते, अपना घर अपने आप कमाई करके नहीं बनाते। मठ पंथ जितने भी बनेंगे वो दूसरों की कमाई से बनाएंगे, अपनी कमाई से नहीं बनाते। तो वो सांप जो ऐसे सांप हैं वो गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके बैठते हैं। क्या प्रश्न? क्या था?
गंगा अपने पुत्रों को सब जगह में डाल देती है।
हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, ये बात दूसरी थी। गंगा जो है वो अपने पुत्रों को मार देती है, सबको नहीं मारती है। क्या? जो और धर्मों के सात पुत्र हैं उनको मारती है। माना एक सन्यास धर्म जो मनुष्य वृक्ष रूपी झाड़ है उसमें एक जड़ ऐसी है जो सबसे मोटी ताकतवर दिखाई गई है, वो कौन सी है?
सन्यास
धर्म। इतनी पावरफुल है कि जब वो एडवांस ज्ञान में आ जाएगी तो सब धर्मों को खलास कर देगी। क्या? कोई भी धर्म नहीं बचेगा। वो शंकराचार्य से वो धर्म शुरू होता है, उनका जनक कौन है? शंकर है। शंकर ही उनका आचार्य है। शंकर का मुख्य काम क्या है? सब धर्मों को खिलाफ कर देना। सांप भी चौकड़ी मार के बैठता है, अंडी बच्चे पैदा करता है। जो चौकड़ी से अंडी बच्चे बाहर निकल जाते हैं, कहीं लुढ़क गए, जैसे कंस की आत्मा बच गई कंस के कुसावे से, वो तो बच गई एक, और बाकी सात कृष्ण जैसे बच्चे कंस के कुसावे में आ जाते हैं। ऐसे ही जो कुंडली के अंदर रह जाते हैं, उन सब को वो खा जाता है।
बाबा लेट हो
जाएगा।
है जाते हैं
सारे
यहाँ की माता है, सारे भक्ति मार्ग के पिछले पूछते, एक